ओम शांति। तो हम सभी के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता जी, सभी एक हाथ हिला करके भाई साहब का स्वागत करेंगे। हम ब्राह्मण बच्चों का विशेष दो बातों से बहुत बहुत प्यार है। कुछ कुछ याद कर रहे हैं क्या है ना? एक तो बाबा बहुत मीठा है, दूसरा अपने आप याद आ गया। एक हमारा बाबा मीठा और दूसरा बाबा की टोली है। मीठा बनाने वाले मीठे बाबा की मीठी टोली डिपार्टमेंट का मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन में संचालन करने वाले आत्म प्रकाश भाई जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। तो फिर से एक हाथ हिला करके दिल से श्रेष्ठ भावनाओं से स्वागत करेंगे। तो भाई साहब का, जैसे बाबा हमेशा कहता है, बाप का जिस तरह से नाम है आत्म प्रकाश, इसी तरह आप हमेशा सभी आत्माओं को देते रहते हैं बाबा की शक्तियों गुणों का शकास। भ्राता जी ने यह ज्ञान नागपुर महाराष्ट्र में 1972 में प्राप्त किया। आपने 1973 में एमएससी में गोल्ड मेडल लिया और सन 1976 में आपने अपना श्रेष्ठ जीवन बाबा के घर मधुबन में ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। आपने भारत के सभी प्रांतों और विश्व के पांचों महाद्वीपों के 84 देशों में भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश व राज्यों क्लास द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आप युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी विशेषता राज्यों का गहन अध्ययन करना व कराना है, इसलिए जब भी भ्राता जी का क्लास होता है तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है मेडिटेशन। उड़ते हैं और उड़ाते हैं सभी को। तो जैसे बाबा की टोली बनती है, इस तरह से ज्ञान की भी आप बहुत अच्छी टोली बनाते हैं। योग की अग्नि में आपने ज्ञान को पकाया है। टोली पकती है ना बाबा की? तो योग की अग्नि में आपने ज्ञान को पकाया है, आत्म अनुभव के प्रकाश से व्यक्तित्व को चमकाया है, धारणा की मिठास से स्वयं को अनुभवी बनाया है, ज्ञान योग और धारणा में स्वस्थिति को मजबूत बना करके बाप दादा की ब्लेसिंग से आपने सारी परिस्थितियों पे विजयी बनकर अपने जीवन को और सभी के जीवन को महकाया है, सभी के जीवन को महकाया है। तो हम सभी आज सुनेंगे स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। ओम शांति।
ओम शांति। स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। संगम युग में प्यारे बाबा रोज हमें योग स्नान कराते हैं। अमृत वेले शक्तियों से भरपूर करते हैं। उसके बाद मुरली के माध्यम से शक्तिशाली ज्ञान का भोजन भी खिलाते हैं। तो प्रभु पालना के द्वारा ज्ञान और योग के अभ्यास से हम सभी बच्चों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भरपूर करते हैं और कर्म क्षेत्र में युद्ध के मैदान में विजयी भव का वरदान लेकर भेजते हैं। बच्चे विजयी भव। तो ऐसी अद्भुत पालना हमें भगवान के मिल रही है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देना है विजयी स्थिति के द्वारा। विजयी स्थिति की अनुभूति करना अर्थात हमेशा चेहरे पर विजय का नशा अनुभव करना। जब चेहरे से खुशी गायब होती है तो समझो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से हमारी हार हुई है, और विजय का नशा है तो समझ लो हम परिस्थितियों पर विजय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, ये परिस्थितियां वास्तव में कुछ नहीं है। हमने जो 63 जन्म विक्रम किए हैं, कई आत्माओं के साथ हमारा नकारात्मक हिसाब किताब बना हुआ है, समय प्रति समय प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ भी किया है, इन सभी कारणों से किसी न किसी रूप में हमारे सामने परिस्थितियां आती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, हिमालय जैसी बड़ी परिस्थिति हो, फिर भी अगर आपकी स्थिति ऊंची है तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उच्च स्थिति के द्वारा। जब हम एरोप्लेन में सफर करते हैं, एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, रास्ते में कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, वो पहाड़ हम सहज पार करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी जब हमारी ऊंची स्थिति होती है तो कितने भी बड़े पहाड़ परिस्थितियों के आते हैं उनको सरलता से सहजता से हम पार करते रहते हैं। ठीक है, दुनिया में कहते हैं सत्यमेव जयते, जो सत्यता को अपनाता है उसकी जय होती है। और हम बाबा के बच्चे सत्य स्वरूप में टिकते हैं, सत्यता के मार्ग पर चलते हैं श्रीमत के अनुसार, और सत्य बाप को याद करते हैं। तो सत्यता को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी विजय निश्चित है, इसी नशे में हमें रहना है। ठीक है, परिस्थितियां आने पर हमें घबराना नहीं है, परिस्थिति आने पर अगर हम घबराते हैं तो परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता हमारी घटती है। परिस्थितियां एक परीक्षा के समान होती हैं। परीक्षा हमें आगे बढ़ाती है। दुनिया में जितनी बड़ी परीक्षा देते हैं उतनी बड़ी प्राप्ति होती है। मीना साहब खड़े हो जाओ, ये देखो इन्होंने सबसे बड़ी परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बने थे, तालियां बजाओ इनके लिए जरा। जितनी बड़ी परीक्षा पास करते हैं उतनी बड़ी प्राप्ति हमें होती है, तो हमें घबराना नहीं है। परीक्षा देने के लिए स्वयं को तैयार करना है। ठीक है, रास्ते में पड़ा हुआ जो पत्थर भी होता है ना, उस पत्थर पर जब तक हाथोड़े नहीं लगते हैं तब तक वो मंदिर में पूजनीय लायक मूर्ति नहीं बनता है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम आत्माओं पर जब तक विघ्नों के हथौड़े, परिस्थितियों के हथौड़े नहीं लगते हैं तब तक हमारी स्थिति परिपक्व नहीं होती है। देवी देवताएं पूजनीय हम नहीं बन सकते हैं, इसलिए हमें विघ्नों से, हथौड़ों से नहीं घबराना है। एक बार मैं अहमदाबाद में जा रहा था, एक बहुत बड़ा जेंटलमैन रिक्शा चला रहा था। मैंने कहा, भाई आप इतने जेंटलमैन लगते हो और आप रिक्शा चला रहे हो। चेहरा उसका बहुत मायूस था। क्या बताऊं, मैं परीक्षा में फेल होता रहा इसलिए रिक्शा चला रहा हूं। परीक्षा और रिक्शा। तो जितना हम परिस्थितियों के परीक्षा में पास होते जाएंगे उतना उन्नति के ऊंचे शिखर पर पहुंचते जाते हैं। हम बाबा के पास क्यों आए हैं, क्यों आए हैं यहां? हम बाबा के पास आए बहुत ऊंची अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए यहां आए हैं। एक स्लोगन लिखो, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा हमारी होती है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे अचल अडोल स्थिति बनाना है, ये हमारा पक्का लक्ष्य हो। अगर हम स्थिति परिपक्व नहीं बनाते हैं तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में खड़े हैं। अचल डोल स्थिति बाबा ने बनाई, उसका यादगार शांति स्तंभ हमारे सामने है। जैसे ब्रह्मा बाप ने ऊंची अचल डोल स्थिति बनाई वैसे मुझे बनाना है। चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े लेकिन मुझे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। ठीक है, तो ऐसी पावरफुल स्थिति बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत ऊंचाइयों को छूता है उसकी कुछ पॉलिसी होती है, उसका कुछ सीक्रेट होता है, तब वो ऊंचाइयों को छूता है। शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, खेल का क्षेत्र लीजिए, राजनीति का क्षेत्र लीजिए, कोई भी क्षेत्र लीजिए, जो बहुत ऊंचाइयों को छूता है उसका कुछ सीक्रेट होता है। तो ऐसे बाबा के पास आने के बाद हम अगर बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट एक ही है। कौन सा? उसका सीक्रेट है ये जो पहला पाठ है आत्म अभिमानी स्थिति का, उसको हमें घोट घोट कर, रट रट कर, कूट कूट कर हमें पक्का करना है। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, स्कूल में छोटे बच्चों को पहला अक्षर क्या सिखाते हैं भाई? हाँ, क्या सिखाते हैं? ए बी सी डी। अब हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ए लिखना आना माना आत्मा समझना आना, बी लिखना माना बाबा को समझना आना, सी माना चक्रों को समझना और डी माना ड्रामा के राज को समझना। अगर ये चार शब्द लिखना अगर हम जानते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत नंबर आगे हम ले सकते हैं। अगर पहला ही अक्षर लिखना अर्थात आत्मा अनुभव नहीं करना हमें आएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमें रियलाइज करना है। हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं, हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, ये क्या पहला पाठ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं ना बाबा के, उनको जरूरत है। हमें उस पर मेहनत नहीं करने देता है, इसलिए हम कई वर्षों तक आगे बढ़ते हैं फिर भी स्थिति हमारी हलचल में आती रहती है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? मैं कौन हूं इस पहेली का हल पाने के लिए आए हैं। जिन्हों को इस पहेली का हल मिला है, आत्मा को अनुभव करने की कला प्राप्त हुई है, उनकी स्थिति अचल अडोल बनती है, नहीं तो वो हलचल में आते रहते हैं और हल चलाने जैसी मेहनत करते रहते हैं। तो पहली बात हमें बुद्धि में पक्की करनी है कि आत्म अभिमानी स्थिति को मुझे पक्का करना है। इस हॉल में आप आए, सीढ़ियां चढ़कर आए हैं, पहली सीढ़ी पर अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ऊपर आ ही नहीं सकते। ऐसी इस ज्ञान मार्ग में पहली सीढ़ी है आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। उस सीढ़ी को अगर हम नहीं चढ़ेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अभी सवाल ये उठता है, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कैसे करें? बहुत विधि पूर्वक हमें यह अभ्यास करना है। विधि अगर यथार्थ होगी तो सिद्धियां हमें प्राप्त होती रहेगी, आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियों की अनुभूति हमें होती रहेगी। विधि बड़ी सरल है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा को देखना होगा। किससे देखेंगे? आत्मा की आंख से ही आत्मा को देख सकते हैं। ये आंखें शरीर की हैं और बुद्धि रूपी नेत्र हमारा आत्मा की आंख है। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र भी दान दिया और हर रोज ऊपर से उस नेत्र में ज्ञान का अंजन लगाने भी बाबा आते हैं, ताकि हमारी आंखों की रोशनी सदा बढ़ती रहे। तो एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा देखना है। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं।
अजीब सितारा क्यों हूं? आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो दिव्य सितारा है उसको विशेष नेत्र की आवश्यकता है, दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, उससे ही उसको देख सकते हैं। इसलिए अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। उस सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं। ठीक है, तो मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, इस बुद्धि रूपी नेत्र से हमें देखना है और उस स्थिति में स्थित होकर आत्मा के जो 7 गुण निजी हैं उन गुणों की अनुभूति करते जाना है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। किस प्रकार की आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं, परम शांति की अनुभूति हो रही है। उस स्थिति में खो जाए। जब तक खुद में खो जाना नहीं आता है तब तक खुदा में खो जाना नहीं आता है, तब तक कोई भी खजाना हमें नहीं मिल सकता है। खुद को देखें और अनुभव करें। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ये आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से किया है। इसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलो कौन सी है? हम बच्चों ने किया, किसी और ने नहीं किया, हम बच्चों ने किया और बहुत मेहनत से किया है अभ्यास। उसकी सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलिए कौन सी है? हाँ जी, हाँ जी, उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। पांडव जो है वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, पांडवों के साथ हमेशा कुत्ता ही दिखाते और कुछ नहीं दिखाते। कुत्ता मना पूंछ हिलाने वाला, कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता है। तो पहाड़ों पर चढ़ते रहना माना ऊंची स्थिति पर चढ़ना, तो आत्मा की पूंछ है ये देह, वो गायब हो जाती है। जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए कुत्ता गायब हो गया, और चढ़ते गए तो गलते गए और चढ़ते गए ऊपर, फिर बाद में गायब हो गए। तो जब हम ऊंची स्थिति पर चढ़ते हैं तो आत्मा की पूंछ देह जो है वो भूल जाते हैं, गायब हो जाती हैं, और जैसे ऊंचाइयों को चढ़ते हैं तो आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान है वो भी गलने लगता है और बाद में गायब हो जाते हैं, अर्थात परम धाम में संपूर्ण बनकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये हमारी यादगार है। हम बच्चों ने ये अभ्यास किया है, इसलिए लोगों को शास्त्रों में ये बातें लिखने के लिए माल मसाला मिला है। ठीक है ना? तो इसको हमें दोहराना है। मैं भाई या बहन नहीं हूं, लेकिन कौन हूं? मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। काया की माया की प्रॉपर्टी है भाई, माया आएगी ना, जिसकी प्रॉपर्टी वही तो आएगा ना। ईश्वर की प्रॉपर्टी ये है आत्मा। जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है, पाप हमारे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती है। तो कहने का भाव है आत्मा के पाठ को बहुत पक्का करना है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत जिगरी मेहनत इस पर की है, तभी बाबा ने पहला नंबर 1 नंबर लिया है। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? सोच के जवाब देना। सबसे जास्ती प्यार हमारा किससे होता है? किससे? बाबा से नहीं, हमारा सबसे जिगरी प्यार जो है अपने देह से है। 24 घंटे कोई साथ रहते हैं आपके? कितना भी नजदीक का संबंधी हो ना, कुछ घंटे ही रहेगा, 24 घंटे कोई नहीं रहता है। तो आत्मा के साथ देह लंबे समय तक रहता है, इसलिए देह से हमारा बहुत लगाव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा हिसाब है। जितना उतना, जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। इस बॉडी के कंपनी ने हमें कौड़ी तुल्य बना दिया। अभी बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, आपको चॉइस है। हाँ, तो बॉडी को भूलना होगा तभी गॉड की कंपनी हमें मिलती जाएगी। तो एकांत में बैठकर हमें इस अभ्यास को पक्का करते जाना। मैं 7 गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में बैठकर विदेही स्थिति की तपस्या में सदा लीन रहता हूं। ठीक है, अभी दूसरा सीक्रेट, अच्छा लडोल स्थिति बनाने का दूसरा सीक्रेट है सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना। आप कितने भी साल इस ज्ञान मार्ग में चलो, अगर सोमान का अभ्यास नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से सोमान का अभ्यास किया, मैं सारे संसार में नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूं। सारी संसार की जो प्रजा है उस प्रजा का मैं पिता हूं। आज मैं बूढ़े शरीर में हूं, कल मैं मिचनो बनने वाला हूं, कन्हैया बनने वाला हूं। हमेशा नारायणी नशे में बाबा रहते थे। जब तक समान का टाइटल आत्मा के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें नहीं होती है और तब तक हम इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। ईश्वरीय नशा, नशा का उल्टा क्या है? शान। नशा आत्मा की शान है और आत्मा की जान है। मैं यहां बैठा हूं, मेरे शरीर में आत्मा नहीं होगी ना, जान नहीं होगी ना, आप कहेंगे मुर्दा बैठा है। तो ऐसे आत्मा में अगर नशा नहीं है तो वो बेजान है। तो ईश्वरीय नशे में हमें सदा स्थित रहना है। बाबा ने हमें बहुत सुंदर सोमान के टाइटल दिए हैं, 100 से जास्ते सोमान के टाइटल दिए हैं। जो आपको खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है, वो सोमान का टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। मैं ओम शांति भवन में 19 मार्च 88 में बाबा से पर्सनली मिल रहा था। हम 100 भाई, केवल 100 भाई, एक के बाद एक सारी रात बाबा से मिलते रहे। और जब मैं बाबा से मिल रहा था, बाबा ने मुझे वरदान दिया, टाइटल दिया, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। सदा विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। ये क्यों मैं बता रहा हूं? जब मुझे स्मृति आती है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, एक सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है, दूसरा सेकंड नहीं लगता है। एक सेकंड में मैं केवल आत्मा नहीं हूं लेकिन विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। समझा?
अभी आपको एक मिनट का टाइम देते हैं, आंखें बंद करके अपनी आत्मा के लिए कोई भी सामान का टाइटल सेलेक्ट करना है आपको, और विधि पूर्वक उस टाइटल में आपको स्थित होना है। एक मिनट का समय आपको देता हूं। ओम शांति। हाथ खड़ा करेंगे जिनको अपनी आत्मा के लिए सोमान का टाइटल मिला हुआ है, सबको मिला है, बहुत अच्छी बात है। सोमान में स्थित रहने की विधि क्या है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मान लीजिए आपका सोमान का टाइटल है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, उस टाइटल पर आपको बहुत गहराई से मनन चिंतन करना है। विश्व परिवर्तन आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, बहुत महान होंगे, उनके बोल कैसे होंगे, बहुत प्रेरणा देने वाले होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे, उनका चेहरा कैसा होगा, उनके चेहरे पर वो नशा होगा, नशे की झलक और फलक होगी, और उनको अपनी स्थिति के द्वारा जीवन में कौन से लाभ होंगे, ऐसे ऐसे लाभ होंगे। बहुत गहराई से हमें मनन चिंतन करना है, और उसके बाद विधि पूर्वक सोमान में कैसे स्थित रहना है, मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं या विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जैसे आप उस पर बैठ गए आपका सब कुछ बदल जाएगा, सोचना बदल जाएगा, बोलना बदल जाएगा, कर्म करना बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जिस घड़ी आप उस सिंहासन से नीचे उतरते हैं चेहरा बिल्कुल साधारण होगा, और जिस घड़ी वो सिंहासन पर बैठते हैं चेहरा ही आपका निराला होगा। तो अभी सभी खड़े हो जाएंगे और दो दो की जोड़ी में आमने सामने खड़े हो जाएंगे, बड़ी बहनें बैठी रहेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक पहले, सॉफ्ट म्यूजिक बजाना पहले, दो दो की जोड़ी में खड़े होंगे, सॉफ्ट म्यूजिक। मैं आत्मा राजा, विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूं, मैं आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करने वाला हूं। भगवान ने मुझे स्वराज अधिकारी स्थिति प्रदान की, द्वापर युग से मैं माया का गुलाम था, अभी मैं आत्मा राजा हूं। शिव बाबा की लंबे समय की आस थी कि मेरा हर आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं, वो आस मैंने आज पूरी कर ली है। इस हाल में आत्माओं रूपी राजाओं की दरबार लगी है, आत्माओं रूपी राजाओं की सभा लगी है। प्यारे शिव बाबा, हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं की दरबार देख देख हर्षा रहे हैं, और हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं, गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। सचमुच क्या गजब का मेरा रोल है, इस बेहद ड्रामा में मेरा हीरो एक्टर है, ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, ड्रामा के डायरेक्टर हर रोज मुझे डायरेक्शन मुरली में श्रीमत के रूप में देते रहते हैं, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। क्या गजब का मेरा रोल है, क्या गजब के मेरे बाबा है, और क्या गजब का ये ड्रामा है, इस बेहद ड्रामा में मेरा गजब का रोल है।
गजब तो गजब है, गजब तो रूहों का वालिद, गजब है गजब तो गजब है, गजब तो गजब है, गजब तो रूहों का वालिद, गजब है गजब इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब,
तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का मालिक गजब है गजब।
खुशबू रूहानी से महके जहां, ओ तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, जर जलवे में है तेरी खुशबू यहां, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब।
राजा सामने विराजमान आत्मा राजा को बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूं। हम दोनों आत्मा राजा एक दो के साथ मीठी रूर नयन मुलाकात कर रहे हैं, शुभ भावनाओं की और कामनाओं की शेयरिंग कर रहे हैं। मैं आत्मा राजा हूं, राजा के नशे की झलक और फलक मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रही है। सचमुच भगवान की मुझ पर मेहरबानी हुई है, जो भगवान ने मुझे स्वराज अधिकारी स्थिति लौटा दी है। वर्तमान समय में आत्मा स्वयं का राजा हूं और भविष्य निकट में मैं औरों का जन का राजा बनने वाला हूं। इस हॉल में आत्मा रूपी राजाओं की दरबार लगी है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा
इन राजाओं की दरबार को परमधाम से देख देख कर शार रहे हैं, और हम सभी आत्मा रूपी राजाओं की सभा के ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा। अभी धीरे धीरे दाहिने तरफ या बाएं तरफ घूमते रहना है, और जो भी सामने आता है उसको राजा ही देखना है। धीरे धीरे दाएं तरफ बाएं तरफ फरिश्ता स्वरूप में घूमना है, और जो भी सामने आ रहा है उसको आत्मा राजा के रूप में ही देखना है। मैं आत्मा राजा हूं, मेरा रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में स्वराज अधिकारी आत्मा राजा हूं, सो भविष्य में विश्व का राजा महाराजा बनने जा रहा हूं। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू। सभी बैठ जाएंगे। तो आत्मा का अभ्यास और सोमान में स्थित होने का अभ्यास, ये दो बातें हैं। दोनों बातें अपना अपना काम करते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, दल दल में कोई व्यक्ति फंसा हुआ होता है, वो दल दल में से निकालने के लिए स्वयं को हिलाता है, छटपटाता है, तो दल दल से थोड़ा सा न्यारा होता है, फिर उसको कोई हाथ पकड़ता है, हाथ देता है और उसको ऊपर उठाता है, दल दल से बाहर निकालता है। तो ऐसे देह अभिमान की दुनिया की जो दल दल है, आत्मा का अभ्यास हमारी बुद्धि का कनेक्शन इस दल दल से कट कर देता है, न्यारा कर देता है। उसके बाद स्वमान रूपी हाथ हमें उस दल दल से बाहर निकालता है और ऊपर परम धाम में बाबा के पास पहुंचाने का काम करता है। तो सोमान हमें बाबा के पास बिठाने का काम करता है, और आत्मा का अभ्यास इस दुनिया से न्यारा अनुभव कराता है। तो दोनों बातों की हमें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। सोमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना, इसी सभा में होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी है गुप्त रीति से, इसी सभा में, जरूरी नहीं बाहर जाने की, लेकिन गुप्त वेश में है। जैसे शरीर छोड़कर परम धाम में जाएंगे और परम धाम से वापस आएंगे तो राजा महाराजा का सिंहासन मिलेगा, रानी महारानी का सिंहासन मिलेगा, और उस सिंहासन पर बैठते समय जो आपकी आत्मा में रुहाब होगा, नशा होगा, मस्ती होगी, वो संस्कार हमें अभी संगम युग में आत्मा में धारण करना है। जितनी बड़ी पोजीशन आपकी होगी उतना बड़ा नशा आपको अभी अनुभव करना है। कैसे? समान के सिंहासन पर बैठकर, ठीक है, हमेशा ब्रह्मा बाबा नारायणी नशे में रहते थे। जब लौकिक में राजाओं को मिलता था तो राजा ही कहते थे, भगवान ने गलती किया दादा, गलती से आपको हमें राजा बना दिया, राजा महाराजा बनने के लायक तो आप दिखाई दे रहे, उनको क्या पता तुम तो कलयुग का राजा, ये तो सतयुग का नंबर वन महाराजा है, उनको तो ये पता ही नहीं था। तो हमेशा बाबा के चेहरे पर
रूहानी नशे की छलक आंखों में स्पष्ट दिखाई देती थी। ठीक है, अभी बाबा के पास परम धाम में बैठ गए। बैठने के बाद परमात्म मिलन का असीम आनंद अगर हम पे लेना है तो उसके लिए आवश्यकता है याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बढ़ाते रहना। क्या कहा? याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। बाबा के प्रति हमारे दिल में जो प्यार है उसका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, तभी हम ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति कर सकते हैं। उसके लिए सारे दिन भर में हमें विभिन्न संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना है, क्योंकि आत्मा समझकर निराकार बिंदु को बाबा को याद करते हैं थोड़े समय के बाद ये अभ्यास हमें बोर होता है। योगाभ्यास में सदा रुचि बनी रहे उसके लिए सारे दिन भर में वैरायटी रूप में अलग अलग संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करना है और योगाभ्यास में रुचि बरकरार रखना है, क्योंकि बाबा का ही गायन है पारस नाथ। वही एक नाथ है जो सर्व संबंधों का रस अनुभव कराता है, सर्व संबंधों की वो शकरीन है, सर्व रसों के वो भंडार है, सर्व संबंधों की अनुभूति कराने की क्षमता उन्होंने है। ठीक है, इसलिए इस संसार में रहते हुए बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। और एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, दिल में रहे एक बाबा से प्रीत, दिल में रहे सदा एक बाबा से प्रीत और निभाते रहे संसार से रीत। संसार में रहते हुए दिल में बाबा को रखना है और जो भी संसार की रीति रस्म है उनको हमें निभाते जाना है और बाबा को संसार अनुभव करना है। बस बाबा मेरा संसार है, मेरे दिल रूपी दुनिया में केवल मेरा दिलाराम बाप ही है और कोई नहीं आ सकता है। मैं अपना दिल तख्त उसको दे चुकी हूँ, मेरे दिल रूपी तख्त पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है। मैंने तीसरी आंख में उसको बिठा दिया है, किसी तीसरे को तीसरी आंख में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तीसरी आंख में कोई तीसरा बैठ जाएगा तो तीसरा नेत्र काम करना बंद होगा। इसलिए बस बाबा ही मेरा संसार हो और बाबा ही मेरा क्या है खजाना देने वाला बाबा मेरा है। अभी अनुभव करना है, 10 मिनट 15 मिनट बोलो करना है अनुभव, हाथ खड़ा करो जो अनुभव करना चाहते हैं, फिर हिलने का नहीं, थोड़ी सी कॉपी पेन हटा दो जरा और थोड़ी तालियां बजाओ 2 मिनट के लिए। थैंक यू। अभी बिल्कुल पावरफुल स्थिति की अनुभूति हम करेंगे, सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। सब में से करना, ध्यान दें। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, मैं सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा, इस देह रूपी गुफा में विराजमान हूं। मैं आत्मा रूपी तपस्वी शांत स्वरूप हूं। शांति के प्रकंपन, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। यह देह तो मात्र मेरा वस्त्र है, देह तो मात्र मेरा मकान है, देह तो मात्र मेरा व्हीकल है, यह देह तो मात्र मेरा वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। ब्रह्मकोटी के बीच मैं दिव्य सितारा टिमटिमा रहा हूं, चमक रहा हूं। दिव्यता की चमक उस आत्मा रूपी दिव्य सितारे से चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा रूपी तपस्वी इस देह रूपी गुफा से न्यारा होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इन पांच तत्व से पार, विश्व के ग्लोब से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मैं तेरी मेरी अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर शिव पिता मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें
ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ परिस्थिति की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। रूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है, शांति शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। मेरी प्राणों की प्राण, मेरी प्राणेश्वर, मेरी प्राण प्यारे, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मौजा आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ। दिव्य नेत्र से देख रही हूँ, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मैं आत्म ज्योति भी बाबा के नयनों का नूर बन चुकी हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है, शक्तियों के सागर शुद्धता से अत्यंत शक्तिशाली, किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शुद्धता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। युवक की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्म के पाप पाला भार में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की रोशनी में तप रही हूं। ज्ञान सूर्य से अथाह शक्ति शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर परम ज्योति शिव पिता के सानिध्य में भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां मैं, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे भाग्य विधाता शिव पिता, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूं, और इस साकार शरीर रूपी गुफा में ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूं। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मौज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, इस वायुमंडल को प्रकंपित करके वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा इस देह रूपी डिब्बे में विराजमान हूं, उस आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति।
सभी ऊपर सोमान की सीट पर सबको सेट किया, तो सभी राजा महाराजाएं रानी महारानी अपना हाथ हिलाएं। भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आपने सीधा बाबा के पास पहुंचा दिया, और बहुत बहुत सुंदर बहुत खूबी एक इतने सही स्वरूप में ले जाकर के सभी स्थिर हो गए, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स बड़े भाई साहब का।